ಭೂಷಿತಕರಣೀರಗಾಭಕ್ತಿಂಬರಾಧೌನಿಫಲಾಧರೋಷ್ಟ ಪೂರ್ಣಸುಂದರ ಮುಖಾಧೀನಾಭೃಷ್ಣಾಹುಜಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಪಿತಾರಾತ್ರಿ ಶರದೋತ್ಫುಲ್ಲಮಲ್ಲಿಕಾ ವೀಕ್ಷರಂತು ಮನಶ್ಚಕ್ರೇ ಯೋಗಮಯಾಮಪಾಶ್ರಿತ ಭಗವಾನ್ ಪಿತಾರಾತ್ರಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಕ್ಯೂ ಆಯಾ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಕರ್ನೇಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಕಿ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಇಸ್ ರಮಣ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಪರ್ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ಚಿತ್ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾದ್ ರಮಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಾತ್ಚಿತ್ ಹುಯಿ ತೋ ರಮಣ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ್ ರಮಣ ಶಬ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋತಾ ಹೈ ಲೌಕಿಕ ವಿಲಾಸ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೀ ರಮಣ ಶಬ್ದ ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಮಹಾತ್ಮಾ ಕೆ ಆತ್ಮರಮಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೀ ಔರ್ ಯಹಾಂ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ರಮಣ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಹೀ ತೋ ಇನ್ಮೇ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಔರ್ ಅನಾಸಕ್ತ ಈ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ತೋ ಗುಣೋ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಹೈ ಔರ್ ತೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಹೈ ಸಂಸಾರಿ ಲೋಕೋ ಕಾ ತೋ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಮೇ ಔರ್ ಅನಾಸಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮಾವೋ ಕಾ ಹೈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೇ ಆತ್ಮರಮಣ ಮೇ ಔರ್ ಈಶ್ವರ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಹೈ ಸ್ವರೂಪ ವಿತರಣ ಮೇ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ವಿತರಣ ಈ ತೀನ್ ಭೇದ ಹೈ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ರಮಣ ಕೆ ತೀನ್ ಅರ್ಥ ರಮಣ ಕಾ ಅರ್ಥ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಲೋಕೋ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಅನಾಸಕ್ತ ಲೋಕೋ ಕಾ ಔರ್ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ತೋ ವಿಷಯ ಪುರುಷೋ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಮೇ ಅನಾಸಕ್ತ ಪುರುಷೋ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಆತ್ಮರಮಣ ಮೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೇ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ವಿತರಣ ಮೇ ಯೇ ಬಾತ್ ಅಪ್ನೆ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಜಹಾ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಹೈ ಔರ್ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಮ ಆಪ್ತ ಕಾಮ ಹೈ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಈ ವಿಷಯ ಕಾಮ ರಹ ನೀ ಸಕ್ತಾ ತೋ ಯೋ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಮೇ ಹೈ ನಹಿ ಆತ್ಮಾರಾಮ ನಾಮೋ ಕಾ ಜೋ ಹೈ ಆತ್ಮರಮಣ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಅನಾಸಕ್ತ ಭಾವ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಸುಖ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಹೈ ನಹಿ ಯೇ ಸ್ವಯಂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಕೆ ಮೂಲ ಹೈ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಹೈ ತೋ ಇನ್ಕಾ ಆತ್ಮರಮಣ ಹೈ ನಹಿ ತೋ ಇನ್ಕಾ ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಇನ್ಕಾ ಹೈ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ವಿತರಣ ಯೇ ತೀನ್ ಭೇದ ತೋ ಜೀವ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಜೀವ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಹೈ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ದೋನೋ ಜೀವ ಕಾ ಹೀ ಜೋ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಚಾಹತೆ ಹೈ ವೋ ಭಿ ವಿಷಯ ಕೆ ಅಭಾವ ಮೇ ದುಃಖ ಕೆ ಅನುಭೂತಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ದುಃಖ ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಔರ್ ಯೇ ಅನಾಸಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೆ ಬಿನಾ ಮಹಾನ್ ದುಃಖ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಇನ್ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ದುಃಖ ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಹೈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೀಲಾ ಅನ್ನ ಸ್ವಾದನ ತೋ ತೀನೋ ಕಾ ಔರ್ ತೀನೋ ಕೆ ತೀನ್ ಭೇದ ಉನ್ಕಾ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಆತ್ಮರಮಣ ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ವಿತರಣ ಸೆ ಪರ್ ಉಸ್ಮೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತೋ ಜೀವೋ ಕೆ ಆನಂದ ಸ್ವಾದನ ಕಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೈ ದುಃಖ ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ और भगवान के अंग स्वजन का प्रयोजन है लीला केवल लोकवती लीला कैवल्यम। तो कहते हैं कि श्री भगवान के स्वरूपानंद वितरण के विचार करने पर यह मालूम होता है कि भगवान स्वरूपानंद का वितरण कहाँ करते हैं, कहीं करते कहीं नहीं करते। आनंद है किसी विषय में कहीं पर भी, वो आनंद क्या भगवान के आनंद स्वरूप का अतिरिक्त कहीं से आता है? विषय भोग में भी जो आनंद की अनुभूति है वो आनंद का स्रोत, आनंद का मूल, आनंद का भंडार तो भगवान का स्वरूप ही है। तो इसलिए इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि जैसे सूर्य सर्वत्र अपनी किरणों का वितरण करता है, इसी प्रकार आनंदमय भगवान भी सर्वत्र स्वरूपानंद का वितरण किया करते हैं। ये भगवान का स्वभाव। ये तो स्वानंद सामयानी भूतानि मात्रा में उपजीवंती। बृहदारण्य उपनिषद का वचन है कि आनंदमय भगवान के स्वरूपानंद कण का ही सारे जीव उपभोग करते हैं और कहीं है ही नहीं आनंद। तो सूर्य सर्वत्र समभाव से किरणों का वितरण करने पर भी जैसे सर्वत्र समान भाव से प्रकाश नहीं होता, सूर्य के वितरण में कमी नहीं है पर समान भाव से प्रकाश नहीं होता। सूर्य किरणें जब सूर्यकांत मणि पर पड़ती है तब विशेष उसका प्रकाश होता है। सूर्य का के किरणें जब किसी तेजस पदार्थ पर चमकती हुई चीज पड़ती है तो विशेष चमक होती है। सफेद चीज पर पड़ती है तो चमक तो नहीं होती पर उज्ज्वल प्रकाश होता है। और वही अगर मिट्टी के घड़े पर पड़ती है या किसी काली चीज पर पड़ती है तो मिट्टी के घड़े पर केवल उत्ताप दिखता है और काली जगह पर उत्ताप का कार्य अनुभव हाथ लगाने पर होता है। तो सूर्य की किरण में तो भेद है नहीं, ये भेद है इसलिए कि उसके जो ग्रहण करने के पात्र हैं उनमें अंतर है। तो भगवान के स्वरूपानंद का जो वितरण है वो भक्तों में तो प्रेमी भक्त में तो पैदा करता है प्रेम विकार। विकार शब्द ये रस शास्त्र में आता है पर ये लौकिक विकार वाला विकार नहीं है। प्रेम की जो दशाएं हैं, प्रेम के प्रादुर्भूत होने पर जिस प्रकार की स्थितियां होती हैं उन स्थितियों का नाम विकार है। इसको सात्विक भाव का फल कहा है। तो उनमें भक्तों में तो दो विकार होते हैं, प्रेम विकार और सेवा रसा स्वादनादि विकार। वो भगवान की सेवा के रस का आस्वादन करते हैं और उनमें प्रेम की विचित्र अवस्थाएं प्रादुर्भूत होती हैं। और जो अनासक्त जीव है उनको दुख निवृत्ति और आत्माराम लाभ का प्राप्त होती है। और जो विषयासक्त जीव है उनको किंचित विषयों में आनंद की उपलब्धि होती है। तो जैसे सूर्य की किरणों में सूर्य का पक्षपात न होने पर भी सूर्य कांत मणि देखने पर मालूम होता है कि सूर्य ने पक्षपात किया। यहां तो देखो ज्यादा प्रकाश हो गया, पास रहने वाली चीज जल भी गई यहां तक, और बेचारे मिट्टी के पात्र को यूं ही रहने दिया तो लोगों को दिखता है कि ये पक्षपात है। इसी प्रकार ये भगवान के आनंद वितरण में भी पक्षपात न होने पर भी प्रेमी भक्त, अनासक्त जीव और विषयासक्त जीव इनके आनंदोपभोग में तारतम्य देखने पर बहम हो जाता है लोगों को कि भगवान के आनंद वितरण में कहीं पक्षपात है। पर भगवान के आनंद वितरण में पक्षपात है, जैसे गंगा बह रही है, गंगा का जल सबके लिए समान है, कोई चाहे इतना ले ले पर अपने अपने पात्र के अनुसार जल आता है। बहते हुए गंगा में जिसका जितना बड़ा पात्र समर्थ होता है छोटे पात्र में थोड़ा, और बड़े पात्रों में जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान सर्वत्र सम होने पर भी और उनके स्वरूपानंद वितरण की व्यवस्था भी सम होने पर भी विषयासक्त जीव जो हैं वो नाना प्रकार के विषयों का संबंध रहने के कारण से क्षुद्र आनंद की का कण मात्र ग्रहण करते हैं। जैसे किसी चीनी के साथ नीम मिला दिया जाए, थोड़ी चीनी हो और उसमें निम्ब चूर्ण मिला दिया जाए तो चीनी का स्वाद तो आएगा, जो स्वाद मिठाई हो तो चीनी की आएगी, पर नीम के कारण से उसमें खारापन रह जाएगा। इसी प्रकार विषय संबंध अधिक होने के कारण से और विषयानंद जो है ये वो आनंद नहीं देगा जो आत्मा रामगणों को मिलता है, और जो आनंद सेवा रस में मिलता है प्रेमियों को वो उनको नहीं मिलेगा। तो भगवान का स्वरूप ही आनंद, रमण शब्द का अर्थ है मुख्य आनंद आस्वादन। तो भगवान जीवों में स्वरूप आनंद का स्वादन करते हैं और भगवान ही अपने स्वरूप आनंद का वितरण करते हैं। तो इसलिए जीव का आनंद स्वादन, आनंद स्वादन एक होने पर भी दूसरा, और जीवों में भी आत्मा रामों का दूसरा और भगवान का दूसरा। तो अनासक्त जीव जो है वो तो विषय संबंध मात्र को दुख हेतु मानकर और सब प्रकार के विषयों का संबंध परित्याग पूर्वक आनंद स्वरूप ब्रह्म के अनुसंधान में रत रहते और ब्रह्मानंद का अनुसंधान पाकर उसमें विलीन हो जाते हैं। ये उनका आत्मरमण है, ये आनंदास्वादन है। और विषयी लोग जो हैं ये तो बस विषयों में आनंद की उपलब्धि करते हैं, उनको उनका आनंद क्षणिक होता है, तत्काल आनंद बदला दुख में परिणत हो गए। तो ये कहते हैं कि फिर ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो है इसमें और भगवान के स्वरूपानंद में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि भगवान का जो स्वरूपानंद वितरण है ये प्रेमी गण उनका रूपानंद का वितरण करके उसका रस वो भगवान देते हैं। ये भगवान का स्वरूपानंद वितरण प्रेमियों को सुख देने में निमित्त बनकर सुख का आस्वादन करता है। तो इसी तो ये प्रेमी भक्त से ऐसा क्यों होता है कि प्रेमी भक्त ही अपने प्रेमानुरूप संबंध से भगवान को अपना मानते हैं, भगवान मेरे, और अपने अपने प्रेमानुभव रूप से भगवान के स्वरूपानंद का आस्वादन करते हैं। वात्सल्य वाले वात्सल्य का, सख्य वाले सख्य का, मधुर वाले मधुर का, इस प्रकार से उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते कि इसमें और भेदन ये कोई कैसा भी हो भक्त्या अनेक आग्रह यह श्रद्धया आत्मा प्रिय सतान भक्ति पुनातिष्ठा स्वपाकान अपनी संभवात। श्रीमद भागवत के इस वचन से ये सिद्ध होता है, भगवान ने उद्धव से कहा ये कि सारे जीवों में आत्मस्वरूप होने पर भी भक्त जो हैं ये मेरे परम प्रिय हैं, उनकी भक्ति से उनके प्रेम से मैं निरंतर उनके वश में रहता हूं। तो भक्ति का महात्म्य यहां तक कि भगवान की भक्ति करने पर स्वपाक, कुत्ते का मांस खाने वाला चांदार जाति का मुक्त हो जाता है। और गीता में भी ऐसे वचन भगवान के भूत बहुत आते हैं, भक्ता तो निराशक्य इत्यादि। तो और गीता ने खास ये बात कही भक्तों के लिए, समय सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, ये भई तुम्हारे भक्तिया मई थे तेषु चाप्य हम। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे भूतों में दूसरे प्राणियों में स्वरूप वितरण में भेद है, उनकी जो उनका जो प्रेम है जो उनकी भक्ति है ये भगवान के स्वरूपानंद को जितना ग्रहण करती है उतना ग्रहण वो नहीं कर सकते, इसीलिए भक्त उनके और वो भगवान के, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके स्वरूप में कोई भेद है या वितरण में कोई पक्षपात है, ये चीज नहीं। यहां तक कह दिया भागवत में साधु हृदय मह्यम साधुना मदिन तो हम मदन के नजानते नहानते जो मना जाती, वो मेरा हृदय और मैं उनका हृदय, हृदय की बदला बदली हो गई, साधु मेरा हृदय और मैं उनका हृदय, उनको छोड़कर किसी को मैं नहीं जानता, वो मुझको छोड़कर वो किसी को नहीं जानते, दो ही रह गए। तो सब भूतों में समान होने पर भी भगवान का भक्त पक्षपात यदि कोई मान है तो इसे मान लेने में कोई आपत्ति भी नहीं है। तो पक्षपात तो नहीं है, पर भक्त हृदय जितना उसको ग्रहण करता दूसरा को उसे कर नहीं सकता। भक्त हृदय में जो प्रियत्व है ना, ये प्रियत्व और कहीं रहता नहीं, इसलिए वहां पक्षपात की सी बात दिख पड़ती है। क्यों दिख पड़ती है? कि ये प्रेमी भक्तों के साथ आचरण करने में भगवान की प्रेमाधीनता साथ रहती है, आत्मारामों के साथ व्यवहार करने में प्रेमाधीनता नहीं है, वहां तो आत्मस्वरूप का दान है और यहां प्रेमाधीनता है, ये और कहीं नहीं। तो जगत में देखा जाता है कि जो बड़े उदार लोग होते हैं, दानी लोग, उन दानी लोगों को कोई दान लेने वाला ठीक मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है, वो तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, पर उदारों को अगर कोई ग्रहण करने वाला मिल जाता है ग्राहक तो उनको बड़ा आनंद होता है। और दी हुई वस्तु को ग्रहण करके यदि वो देख लेते हैं दाता कि इस चीज को पा करके लेने वाला बड़ा सुखी हो रहा है, मजे में भोगता है, तब तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रहती। चीज के देने में आनंद और दे करके देखते हैं कि वो चीज को ठीक भोग रहा है, सुख भोग रहा है, तो उन्हें बड़ा आनंद। तो ये आनंद दानशील जो भगवान है, ये भगवान भी जब आनंद के आनंद का कोई ग्राहक मिल जाता है इनको, इनके आनंद का ग्राहक कोई इनको अगर मिल जाता है तो बड़ी आनंदित होते हैं। किंतु जो विषयासक्त जीव हैं वे दिए हुए आनंद के साथ वो धूल मिला लेते हैं, मुनी मिला लेते हैं, वो मिट्टी मिला लेते हैं, तो इसलिए उनका मिश्रित आनंद उनको भी आनंद नहीं देता और भगवान भी देखते हैं कि ये तो ठीक नहीं। और इसी प्रकार जो अनासक्त आत्माराम है, ये स्वरूपानंद सिंधु में विलीन हो जाते हैं, स्वरूपानंद सागर के साथ है, ये घुल मिलकर एक हो जाते हैं, तो इनको भी भगवान आनंदा स्वरण करते देख नहीं सकते। कैसे देख सकते? ये तो विलीन हो गए आनंद सागर में। तो जो प्रेमी भक्त हैं उनको तो भगवान देखते हैं कि हमारे प्रेमानंद को पाकर, और ये लोग इस विलास में मत हो रहे हैं। तो इसलिए अपने स्वरूपानंद का ठीक ठीक ग्रहण करने वाले और सुचारू रूप से आस्वादन करने वाले भक्तों को देख करके उनमें वितरण करके भगवान अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो स्वरूपानंद का वितरण है भगवान का, ये भगवान को आनंदास्वादन देने वाला होता है भक्तों में जाकर के ही। तो यहां रमण शब्द का अर्थ है आनंदास्वादन और प्रेमाधीन भगवान का भक्तों में आनंद वितरण। तो ये तो सिद्ध हो ही गया कि भगवान का रमण स्त्री विलास और प्राण क्रीड़ा तो है, इसकी तो कल्पना ही नहीं, ये तो कल्पना अतीत चीज है। आनंदास्वादन का यहां किसी प्रकार का भगवान के साथ संपर्क ही नहीं। तो भगवान ने रमण की इच्छा की, इसका ये अर्थ है कि आनंद में भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के वासनानुरूप भावानुरूप आनंद वितरण करके स्वरूपानंद स्वादन की इच्छा की। ये रमत मनश्चक्र का अर्थ, अर्थात आनंदमय श्री भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों में उनकी वासनानुरूप आनंद का वितरण करके स्वरूपानंद का स्वादन करने की इच्छा की। ये भगवान ने रमण करने की इच्छा की का अर्थ है। तो इसलिए जो युक्ति आप तक दी गई, प्रमाण दिया गया, ये है तो बहुत थोड़ा, लेकिन समझने वाले लोग इतने में सही समझ जाएंगे कि भगवान का स्वरूपानंद वितरण ये यहां पर ये रमण ये है, ये रमण का अर्थ। अब कहते हैं कि भाई ये जीव गोस्वामी ने और अपनी टीका में लिखा है कि सर्वातशाही प्रेमवती नाम ब्रज सुंदरी नाम मनोरथ परिपूर्ण प्रियमात्र सुखारथम सर्वं कुर्वतः श्री भगवतो मुखतर प्रयोजनम इति दर्शयन् तदेवच तस्य सर्वातशाही सुखमिति च प्रकटयन् तदेवाधिष्ठाभिः सह रासक्रीडां पञ्चेन्द्रियतुल्यैः पञ्चभिराध्यायैः वर्णयति। भगवान ने अपने जिस किसी भी प्रियजन भक्त के आनंद बधना जो कुछ भी कार्य किया, मैंने ये जो कार्य है इनका, ये भगवान करते हैं प्रियजन के भक्त के आनंद वर्धनार्थ। अतः प्रेमवती ब्रज सुंदरियां ब्रज सुंदरियों के मनोरथ को पूर्ण करना ही यहाँ भगवान का मुख्यतर प्रयोजन है और वही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वादन है। इस परम तत्व के प्रकाश के लिए ही श्रीमद् भागवत के पांच इंद्रियों के समान ये पांच अध्याय ये भगवान के साथ गोप रमणियों के क्रीड़ा योग्य लीला का वर्णन रास क्रीड़ा के नाम से वर्णित है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भगवान जिनको प्यार करते हैं वे भगवान के प्रिय हैं और भगवान भी उनके प्रिय हैं। ये भगवान ने गीता में घोषणा की, जगह जगह चाहे काल कुछ बताया पर कहा भक्तिमान वे समय प्रिय, जो भक्तिमान है वो मेरा प्रिय है। तो भक्तिमान की प्रियता भगवान को स्वीकार है, विशेष रूप से भक्तिमान की प्रियता भगवान को स्वीकार है। तो भगवान सब जीवों में समदृष्टि होने पर भी जब अवतीर्ण होते हैं तो परित्राण किसका करते हैं? साधुओं का करते हैं। तो वहां वो विषम नहीं है, साधुओं का परित्राण करते हैं, दुष्कृतियों का विनाश करते हैं। तो भगवान के जो प्रियजन हैं वही भगवान के भक्त वही साधु। तो मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि द्विधा क्रियाः, ये पद्म पुराण का वचन है कि हम अपने प्रियजनों का प्रिय कार्य करने के लिए सब लीला करते हैं। भगवान की लीला का कारण है प्रियजनों का प्रिय कार्य, अपने प्यारों को सुख देना। तो और प्यारों में चाहे कितने कोई प्यारे हों, ब्रज सुंदरियों के समान भगवान का प्रिय कोई आज तक हुआ नहीं है। नहीं तो बोल इसका प्रमाण, बोले प्रमाण तो इसके बहुत हैं, पर भगवान के शब्द यहां पर उद्धृत किए जाते हैं आदि पुराण के। निजांगम पिया गोपिया गोपियो नमेत समुपासते ताभ्यां परम मन पार्थ निगूर प्रेम भजन मन महात्म्यम मत सपरियां मत श्रद्धां मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। अर्जुन भगवान का संवाद है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन श्री गोपाल नारायण अपने देह को मेरी सेवा का उपकरण ही मानते, इनसे भोग सुख मिलेगा ये नहीं मानती। अपने शरीर से हमें भोग सुख मिलेगा इसके लिए शरीर ये नहीं मानते। अपने देह को भगवान की सेवा का उपकरण मानते हैं और इसीलिए देह से प्यार करते हैं। हम लोगों का जो देह से प्यार करना है ये दूसरा, हमारी देहाशक्ति है, हम देह को सुख देने के लिए शरीर के आराम के लिए ही सारे पदार्थों का सेवन करते हैं। हमारा कमाना खाना ये दो ही चीज के लिए होता है, शरीर को आराम मिले और नाम का नाम हो, मिथ्या नाम उसका नाम हो, और पांच भौतिक मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर इसको आराम मिले। तो देहाशक्ति को लेकर के हम देह से प्रेम करते हैं, और गोपियों का जो देह से प्रेम है ये देह के लिए नहीं है, ये भगवान के सुख के लिए। और साथ साथ गोपियों का जो वस्त्राभूषण आदि सेवन है, ग्रहण है, देह को सुसज्जित करना है, ये भी अपने लिए नहीं, अपनी शोभा के लिए नहीं है। अपनी शोभा के लिए हो तो वो दिला सकती है, वहां प्रेम का कहीं प्रेम की कल्पना भी नहीं है, वो तो वेश्याओं का काम है। अपने को सजाना, पतिव्रता भी नहीं सजाती पति को दिखाने के सिवा। और ये जो श्री गोपांगनाए हैं इनके तो देह के सज्जा करने का, सुशोभित करने का हेतु है केवल मेरा सुख, केवल मैं। तो इसलिए निगुण प्रेम भाजनम, निगुण प्रेम भाजन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मेरा प्रेम पात्र तीनों लोकों में कोई नहीं है गोपांगनाओं को छोड़कर। इसलिए मेरा सारा का सारा जैसा जो कुछ मैं हूं ये गोपांगनाओं में उतर आया है। लोग मेरी महिमा गाते हैं मेरी आंख से मेरी महिमा में जानकर, अपनी अपनी बुद्धि से महिमा का गान करते हैं, पर भगवान का, भगवान की दृष्टि में महिमा का पदार्थ क्या है इसको। इसी प्रकार सेवा करती हैं अपने मनोरूप और उनकी सेवा को भगवान कहते हैं मैं ग्रहण भी करता हूं, लेकिन मैं मेरी सेवा वास्तव में क्या है इसको नहीं जानता हूं। अब तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा से अपनी श्रद्धा से भगवान को किम भूत किमाकार बना लेते हैं, तामसी श्रद्धा हमारी यत्न मन भगवान को कैसे रूप वाला बना लेते हैं। अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हम भगवान के रूप की कल्पना करते हैं, पर भगवान की श्रद्धा का भगवान की दृष्टि में क्या स्वरूप है ये भगवान ही जानते हैं। और मन मनोगतम, भगवान के मन में क्या है ये भगवान का मन जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि श्री गोपांगनाएं जो मेरी निगूढ़ प्रेम भाजन है मेरा मैं उतर आता हूं, तो इसलिए मेरा महात्म्य, इसलिए मेरी सेवा का स्वरूप, इसलिए मेरी श्रद्धा का स्वरूप, और इसलिए मेरे मन में क्या है इसका यथार्थ दर्शन तत्व से केवल गोपियों को होता है और किसी को होता ही नहीं। चार प्रकार की सेवा बनती है, एक तो आज्ञा मानकर, एक संकेत पाकर, एक रुचि देखकर, और एक सेव्य के मन को अपने मन में उतार कर। भाई अमुक प्रकार से वो जानता नहीं, अमुक प्रकार से हमारी सेवा करो, उस पर भी अपना मन लगा देता है बीच में, बोलिए तो उन्होंने बताया है ना यूं ठीक होगा, तो वो तो आज्ञा से भी परे की चीज हो गई। आज्ञा देने देनी परे परे सेवा कराने के लिए, तब वैसी सेवा कर सके ये आज्ञाकारी सेवक। और आज्ञा की आवश्यकता नहीं, जबान से नहीं बोलना पड़ता, संकेत पाकर उसी के अनुसार आचरण करता है वो संकेत दर्शी सेवक। तीसरा, संकेत नहीं आवश्यक होता उसके लिए, वो रुचि पहचान गया। सेव्य की रुचि उसके हृदयंगम हो गई, हृदय में आ गई, सेव्य को कब क्या रुचिकर होता है ये वो जान गया।